यशाया अध्याय 30 पद 1। यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। इन लोगों पर दंड आने वाला था। वे जानते थे कि अशुरों की सेना आ रही थी। वे मार्गदर्शन और सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारने की अपेक्षा मिस्र में अपने राजदूत भेजकर संधि का प्रस्ताव रख रहे थे कि उनके सैनिकों को किराए पर ले, जिससे कि वे अशुरों से उनकी रक्षा करें। यशाया ने कहा कि मिस्रियों से सहायता लेना मूर्खता है, क्योंकि अशूर मिस्र का भी नाश करेंगे, परंतु अशूर इसराइल का नाश नहीं करेंगे। वे शांत होकर परमेश्वर में विश्वास तो रखें। हाय उन पर जो युक्ति के खोज में तो है परंतु परमेश्वर से युक्ति नहीं खोजते। भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। लोग आजकल परामर्श तो चाहते हैं परंतु परमेश्वर से नहीं। वे ऐसे संसारिक लोगों, मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं जिनका दिमाग मानववाद और मनोविश्लेषण से भरा हुआ है। वे अपने दिमाग का कूड़ा आपके दिमाग में भरने के लिए आपको हजारों रुपयों का चूना लगाते हैं। ये हास्यपद है। हाय उन पर जो परमेश्वर से परामर्श नहीं लेते, जो अपनी परेशानियों को छिपाने के लिए एक ढक्कन को खोजते हैं, ना कि परमेश्वर की आत्मा को। यशाया अध्याय 30 पद 2। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। मिस्र में अब कुछ नहीं रहा, वो छाया सा है, वो गिरावट की ओर जा रहा है, उसका पतन निश्चित है। यशाया अध्याय 30 पद 3 से लेकर 7 तक। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सोआन में आए तो है और उसके दूत अब हानेस मिस्र के बड़े नगर में पहुंचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। वे अपनी धन संपत्ति को जवान गद्धों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुबाड़ों पर लादे हुए संकट और साकेती के देश में होकर, जहां सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ ना होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है। इस कारण मैंने उसको बैठे रहने वाली राहब कहा है। यशया ने हिजकिया से हमेशा यही कहा था, तू निश्चिंत रह, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तुझे अशूरों और उनके आक्रमण की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, तुझे तो युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, तेरी ओर से परमेश्वर युद्ध करेगा। अब तेरा काम है केवल परमेश्वर में भरोसा रखना। इसलिए यहां वो कहता है, तेरा बल इसी में है कि तू शांत बैठकर परमेश्वर पर भरोसा रख। यशाया अध्याय 30 पद 8। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर कोद और पुस्तक में लिख कि वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। मेरे वचन को लिख ले, जिससे कि जब परमेश्वर न्याय करे तो तू पुस्तक निकाल कर उनको दिखाना। देखो मैंने तुमसे यही कहा था, देख लिया तुमने, अब भुगतो। यशाया अध्याय 30 पद 9 और 10। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबुवत करो, मेरे विषय में अच्छी अच्छी बातें करो, मुझे सच सच कुछ मत बताओ, मैं सच्चाई जानना नहीं चाहता। वे भविष्यत वक्ताओं से ऐसा कहते हैं। यशाया अध्याय 30 पद 11 से लेकर 14 तक। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इसराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इसराइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो, और वो अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा, और कुमार के बर्तन की नाई फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा। परमेश्वर इन सब पात्रों को तोड़ देगा। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी है, जहां लेखक प्रभु यीशु मसीह के राज्य का उल्लेख करता है कि वो लोहे के राजदंड से मिट्टी के पात्रों को तोड़ देगा और टुकड़े कर देगा। जिन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया हुआ है, उनको वो तोड़ डालेगा। यशाया अध्याय 30 पद 14, कि उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी न मिलेगा, जिससे अंगिती में से आग ली जाए, वो हौद में से जल निकाला जाए, पानी निकालने के लिए टुकड़ा तक नहीं बचेगा। यशाया अध्याय 30 पद 15। प्रभु यहोवा इसराइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, मिस्र के पास भागकर मत जाओ, लौट कर आ जाओ और यहोवा पर निर्भर करो तो तुम सुरक्षित रहोगे। यशाया अध्याय 30 पद 15 और 16। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और ये भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, सो तुम्हारा पीछे करने वाले उससे भी तेज होंगे। हम अशूरों के हाथ से बच निकलेंगे, हम घोड़ों पर चढ़ भाग खड़े होंगे, परंतु परमेश्वर कहता है, तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज चलेंगे। यशाया अध्याय 30 पद 17 और 18। एक ही धमकी से 1,000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे, वो टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। कुछ धनवान लोग अशूरों के आगमन का समाचार सुनकर मिस्र को भाग रहे थे, घोड़ों पर चढ़ो और मिस्र भाग लो, परंतु मिस्र तो खुद ही अशूरों से हार गया और यरूशलेम खड़ा रहा। वहां वे लोग थे जो शांत बैठकर परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए थे। परमेश्वर ने अशूरों की सेना का सफाया कर दिया, इसराइल के वंशजों को उनसे युद्ध करना ही नहीं पड़ा था, परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई। हम आगे चलकर इसका वृत्तांत सुनेंगे। परमेश्वर का दंड अश्शूरों पर आया और एक ही रात में उसने योद्धाओं की पहली टुकड़ी का सफाया कर दिया, जिसमें 185,000 सैनिक थे। यहां भविष्यद्वक्ता उनसे बार बार यही कह रहा था, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, भागो मत, वे तुम्हारा पीछा करेंगे और वे उससे भी तेज होंगे, परंतु वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मुक्त किए जाएंगे। यशाया अध्याय 30 पद 19 से लेकर 21 तक। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा, और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे, और जब कभी तुम दहनी वो बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये कैसी महिमामय बात है कि आत्मा की अगुवाई में रहा जाए और परमेश्वर का कहा सुना जाए, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये मार्ग क्या है? परमेश्वर की प्रतीक्षा करना और उस पर भरोसा रखना। यशाया अध्याय 30 पद 22 से लेकर 26 तक। तब तुम वो चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मड़ी है, और वो सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और कहोगे दूर हो, और वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के कामों में आएंगे, वे सूप और डलिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। और उस महासंहार के समय जब गुमुट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात 8 वारे भर का प्रकाश 1 दिन में होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज में उस सितारे के सदृश विस्फोट होने लगेंगे, जो विस्फोट होने के कारण बहुत तीव्र प्रकाश देता है। यशाया अध्याय 30 पद 27। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है, उसके होठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। यहां फिर से एक बार परमेश्वर के क्रोध के दिन की भविष्यवाणी है, उसका महाप्रकोप। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा होगा और सूर्य 7 गुना अधिक प्रकाशमान होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में परमेश्वर पृथ्वी पर अपने प्रकोप के कटोरों को उंडेल रहा है। 4th कटोरे के उंडेलने पर वो सूर्य को शक्ति देता है कि वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को जला दे। उस समय मनुष्य सूर्य की गर्मी से जलकर मर जाएगा। अतः सूर्य का प्रकाश 7 गुना अधिक हो जाने के कारण चंद्रमा भी प्रकाश का अधिक परावर्तन करेगा और पूरा चांद तो ऐसा प्रकाश देगा कि रात दिन में बदल जाएगी। पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि सूर्य विस्फोटों के कारण बहुत अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। सूर्य के 7 गुण प्रकाशमान होने और उसके पृथ्वी पर प्रभावों के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। निस्संदेह सूर्य की ऐसी स्थिति पृथ्वी पर विनाश ही लाएगी। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि जब कोई सितारा समाप्त होता है तो उसका प्रकाश बहुत तीव्र हो जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड में दिखाई देती रहती है। ऐसे अनेक सितारे देखे गए हैं जो समाप्त होते हैं, वे बहुत तीव्र प्रकाश देने लगते हैं, इसलिए उन्हें महान सितारा कहते हैं। इसी स्थिति में विकिरण रेडिएशन बहुत अधिक होता है, तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये महान सितारे वाली स्थिति होगी। परंतु यहां भी लिखा है कि देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है, उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जब प्रकोप का कटोरा सूर्य पर उंडेला गया तब ये कहा गया। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 8 पद, अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका प्रकोप है, उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। यशाया अध्याय 30 पद 28 से लेकर 31 तक, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है, वो सब जातियों को नाश के सूप में फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों पे लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उसे मिलने को जो इसराइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुज बल दिखाएगा। अशुर यहोवा के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा और उसे सोटे से मारेगा। अब हम एक बार फिर निकट भविष्य की परिस्थिति में आते हैं। परमेश्वर अशुरों को नाश कर देगा। यहां अशुर क्रिस्त विरोधी का रूपक है, जिसका विनाश यीशु के मुख से निकलने वाली तलवार से होगा जब मसीह फिर से आएगा। यशाया अध्याय 30 पद 32 और 33, और जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी और वो हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है। तोपेत नरक है जिसे नए नियम में अधोलोक कहा गया है। बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है। यीशु ने कहा था कि तोपेत शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। ये बहुत समय से तैयार किया हुआ है। परमेश्वर ने उसे तैयार करके रखा है। तोपेत शब्द का अर्थ है जलती हुई आग का स्थान। नए नियम इसका वर्णन आग की झील किया गया है। तोपेत बहुत काल से तैयार किया गया है। यशाया अध्याय 30 पद 33, वो राजा ही के लिए ठहराया गया है। वो लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत से लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। दाऊद ने कहा, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में उतर जाऊं तो तू वहां भी है। यहां वो तोपेत का सजीव वर्णन कर रहा है, जिसे यूनानी में गहन्ना कहा गया है। ये दुष्ट मृतकों का अंतिम स्थान है, नरक अनंत दंड का स्थान नहीं है। मृत्यु और अधोलोक एक दिन अपने मुर्दों को दे देंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में लेखक परमेश्वर का बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय को देखता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 13 और 15। और मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। पद 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। गहन्ना तोपेत ये दूसरी मृत्यु है। इस प्रकार जिस दिन अधोलोक अपने मुर्दों को परमेश्वर के सामने न्याय के लिए देगा, उस दिन उसका अंत हो पाएगा, तब उन्हें नरक में डाला जाएगा। नरक के विषय में धर्मशास्त्र कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। यूनानी भाषा में आयोनियोस पोस्टो आयोनियोस का अनुवाद युगान युग है। ये अनंत काल के लिए प्रयोग किया गया बहुत प्रभावी शब्द है। यीशु मसीह ने नरक के बारे में कहा, मरकुस 9 अध्याय 48 पद, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कुछ लोगों का कहना है नरक अनंत दंड का स्थान नहीं है, बाइबल भी यही कहती है। नहीं, बाइबल अवश्य कहती है, और वे आपको संदर्भ दे सकते हैं। जब आप नरक के विषय में चर्चा करते हैं तब आप किसी और स्थान की बात करते हैं। नरक तो बहुत समय से तैयार किया हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार पीड़ा का धुआं वहां युगान युग उठता रहेगा। यीशु ने कहा, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आप उसको जैसे चाहे पड़े। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इस वाद विवाद का परित्याग करता हूं। मेरी तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है कि मैं वहां जाऊं, ना ही मैं उनके प्रति चिंतित हूं जो वहां जल रहे हैं और उनका धुआं युगान युग उठ रहा है। यीशु ने निश्चय ही ये कहा था, उनका कीड़ा नहीं मरता। मेरे विचार में तो ये परमेश्वर से अनंत दूरी है, और हम इसका ज्ञान रखें या ना रखें, ये काम परमेश्वर के हाथ में है। मैं ना तो इसकी चिंता करता हूं, ना ही इस विषय में भ्रम उत्पन्न करना चाहता हूं। ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर वही करेगा जो उचित और निष्पक्ष है। मेरी चिंता का विषय तो केवल वो घर है जो परमेश्वर ने मेरे अनंत वास के लिए स्वर्ग में बनाया है। मेरे उत्साह का यही कारण है, और मैं उस महिमामय भविष्य में पहुंचना चाहता हूं जो प्रभु के साथ होगा। प्रभु के साथ अनंत भविष्य, यही मेरे उत्साह का विषय है। अगले 5 अध्यायों में बड़े रोचक विषय है। अध्याय 33 में हम अशूर सेना का विनाश देखेंगे, और अध्याय 35 में अंधकार के अंत में महान ज्योति, जो अध्याय 34 में दिए गए महाक्लेश के युग के पश्चात आती है। अध्याय 35 में परमेश्वर के राज्य का गौरवशाली युग जिसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रभु आपके साथ हो और आपको अपने प्रेम और अनुग्रह में आशीषित एवं सुरक्षित रखे। प्रभु आपकी रक्षा करें और आप उसकी आत्मा से पूर्ण होकर जब वो दिन प्रतिदिन आपका अभिषेक करें तो आप आत्मा के बल और सामर्थ प्राप्त करें और आप उस परिपूर्णता में प्रवेश करें जो उसने आपके लिए रखी है। प्रभु के साथ चले, प्रभु से प्रेम रखें, प्रभु की आवाज सुने और इन अंतिम दिनों में जब लोग मतवाली उदासीनता में हैं, तब आप प्रभु के लिए जागते रहें। आपका मन मस्तिष्क परमेश्वर के प्रति शुद्ध हो और आत्मिक बातों में संवेदनशील हो, यीशु के नाम में।